आर्या ने नंदिनी को सब कुछ समझा दिया था। उस हिसाब से नंदिनी ने सारी तैयारियां की और जिम के आने से पहले ही घर पहुंची। उसने डिनर बाहर से ले लिया था और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लिया। उसने मेड की हेल्प से डाइनिंग टेबल को अच्छा सा डेकोरेट किया। हालांकि उसका सच जानने के बाद नंदिनी को उससे नफरत हो रही थी, फिर भी उसने शिवी की खातिर खुद को स्पेशल तैयार किया। जैसे ही जिम ने घर में कदम रखा, वहां अंधेरा था। नंदिनी बेबी, कहाँ हो तुम? जिम ने आते ही नंदिनी को आवाज लगाई। अचानक वहां लाल डिम लाइट ऑन हुई। जिम ने देखा, सामने से नंदिनी चलकर आ रही थी। उसने ब्लैक कलर का नाइट ड्रेस पहना था। उसे देखने के बाद जिम के चेहरे पर स्माइल थी। नंदिनी उसके पास आई और उसके गले में अपने दोनों हाथ डालकर कहा, कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? आगे से मत जाना, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अब से कहीं नहीं जाऊंगा और जहां भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर चलूंगा, जिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके होंठ नंदिनी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी नंदिनी उससे अलग हुई। पहले खाना खा लेते हैं, नंदिनी ने कहा। जिम ने उसकी बात पर हामी भरी। वो फ्रेश होने के लिए अंदर चला गया। उसके जाते ही नंदिनी ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर बाद वो दोनों बाहर थे और साथ में डिनर कर रहे थे। नंदिनी ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। क्या हुआ, मेरे पीछे से सब ठीक तो है ना? जब फोन पर बात हुई थी तब तुम एक्साइटेड लग रही थी। तुमने मेरे लिए इतनी सारी अरेंजमेंट्स की और अब तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, जिम ने नंदिनी के हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा। हाँ सब ठीक है, बस शिवी की वजह से परेशान हूँ। इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर लिया है, वो मेरी सुनती ही नहीं है, बोलते हुए नंदिनी की आंखें नम होने लगी। चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारी ये टेंशन भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, जिम ने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया। वो नंदिनी से प्यार करने लगा था। मैंने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिया तो क्या हुआ, उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, सॉरी तक नहीं बोला, न जाने क्यों बट उसकी याद आ रही है। नंदिनी जानबूझकर उससे शिवी की बातें कर रही थी ताकि जिम उसे थोड़ा ही सही पर कुछ बता दे। अरे आजकल के बच्चे कैसे होते हैं तुम जानती नहीं क्या? नील को देखा ही होगा, मैंने उसे घर से निकाला था, उसके बाद से उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। घर आता है तो अजीब बिहेव करता है, बस उसके साथ रहते रहते शिवी भी उसी की तरह हो गई है। नंदिनी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। उन दोनों का डिनर हो चुका था। डिनर के बाद नंदिनी ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, आई नीड रेस्ट। कोई बात नहीं, जिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो नंदिनी को बेडरूम में ले गया। कुछ ही देर बाद जिम नींद के आगोश में था तो वहीं नंदिनी अब तक सोने का दिखावा कर रही थी। जिम के सोते ही वो उठी और उसने उसका फ़ोन लिया। वो ये देखकर हैरान थी कि आज जिम के फ़ोन का पासवर्ड चेंज था और वो उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। उसने मोबाइल वापस वहीं रख दिया और जिम की तरफ हैरानी से देखने लगी। आई वॉज विशिंग आर्या ने जो भी कहा था वो झूठ हो। तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड चेंज करना इस बात का सबूत है कि तुमने मेरी बेटी को कैद कर रखा है। शिवी के जाने के बाद मैं कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। एक बार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, नंदिनी ने अपने मन में सोचा और वहीं लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। आर्या अपने होटल में वापस लौट चुका था। वो अकेलापन महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने विक्रम जी को कॉल लगाया। उसने उन्हें यहाँ जो भी हुआ था उन सब के बारे में बताया। इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? आर्या कब तक तू सब कुछ अकेला सहता रहेगा? विक्रम जी ने दुखी स्वर में पूछा। पता नहीं दादू, पर अब मैं भी थक गया हूँ। आई डोंट नो क्या होगा, पर मुझे एक नॉर्मल लाइफ बितानी है अपनी शिवी के साथ, आर्या ने जवाब दिया। तूने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है तो ऊपर वाला भी तेरा बुरा नहीं करेगा। वाहेगुरु पर यकीन रख, सब अच्छा होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा दादू, मैंने आज से पहले खुद को इतना होपलेस कभी फील नहीं किया। जब मुझ पर और आली पर अटैक हुआ था तब मुझे लगा मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ और ये सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ठीक से होश तक नहीं था, पर यहाँ यहाँ मुझे हर एक चीज़ फील करनी पड़ रही है। ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत बुरा है, बोलते हुए आर्या की आंखों में आंसू आ गए। इस वक्त उसका कोई अपना नहीं था जो उसके आंसू पहुंचकर उसे शांत करवा सके। उसके रोने की आवाज़ सुनकर विक्रम जी उदास ना हो जाएं, इसलिए आर्या ने कॉल कट कर दिया। तो वहीं उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर विक्रम जी की हिम्मत भी टूट रही थी। वो गिरने वाले ही थे कि आशुतोष ने उन्हें संभाल लिया। पापा संभाल कर, आप अब ठीक है ना? मैं हॉस्पिटल कॉल करूं? आशुतोष ने पूछा। उन्होंने विक्रम जी को सोफे पर बैठाया और तुरंत उनके लिए पानी लेकर आए। मुझे आर्या आगे के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है, विक्रम जी ने भरी आवाज़ में कहा। लेकिन आर्या तो किसी वेंचर के लिए इंडिया गया हुआ है, अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से किसी मैनेजर को भेज देता हूँ या कोई और बंदा अरेंज करवा देता हूँ। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रही कि आप ट्रैवल कर सकें, आशुतोष ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उनकी बात सुनकर विक्रम जी ने एक नज़र उनकी तरफ देखा। उन्होंने कड़वाहट भरी मुस्कान दी और कहा, काश तुम्हें समझ आता कि बच्चों को हमेशा पैसों या बिजनेस में ही प्रॉब्लम नहीं आती, उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है। उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी खासी चल रही है, उसे शिवनंदिनी पसंद है और अपनी मर्जी से ही उसने शादी के लिए टाइम मांगा है। आशुतोष ने रूखे तरीके से जवाब दिया। उसे तो अब तक एली और आर्या के बारे में भी कुछ पता नहीं था। तुम्हें खुद के अलावा अपने बच्चों के बारे में भी सोच लेना चाहिए, कब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तुम हमेशा से इस बात से बेखबर रहे हो, विक्रम जी ने जवाब दिया। फिर उन्होंने आर्या और एली के रिश्ते से लेकर एली के मरने तक की सारी बात बताई। आर्या ने कॉल पर उन्हें शिवी के पापा का एली के मर्डर केस में फंसने के बारे में और उसके किडनैप होने के बारे में बताया था। वो सब भी उन्होंने आशुतोष को बता दिया। एक बार आप मुझसे आकर बात तो करते, आर्या ने कभी कुछ नहीं कहा। आशुतोष के चेहरे पर पछतावे के भाव थे। शौर्य और मायरा ने भी उनकी बातें सुन ली थी। आशुतोष की बात सुनकर उनके चेहरे पर गुस्सा था। ओ रियली डैड, ब्रो ने आपको कभी कुछ नहीं कहा होगा, कभी कुछ नहीं मांगा होगा, आपको ये क्यों लगता है? क्या उन्होंने आपसे ये नहीं चाहा था कि उनकी बहन, हमारी एल्डर सिस्टर बंधन को भी इस घर में होना चाहिए? हमें तो उसके बारे में दादू ने बताया, वरना कभी पता ही नहीं चलता, मायरा ने गुस्से में कहा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड्स की फिक्र रहती है, लेकिन अपने ही बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है उनकी परवाह नहीं। आप सच में बहुत ग्रेट हो डैड, बस हमेशा खुद का ही सोचना, फिर चाहे इस चक्कर में हम सब मर भी क्यों ना जाएं, शौर्या ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया। उन सब की बातें सुनकर आशुतोष का नजरें नीचे हो गईं। उन्हें शर्मिंदा होता देख विक्रम जी ने कहा, कभी गौर करना कि बंधन के जाने के बाद से तुमने अपनी लाइफ में क्या किया है। अपनी 2 दिन की बच्ची को घर से निकाल दिया, आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। अपने बेटे उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अपनी जिंदगी में हर गलत काम किया जिससे आर्या को हर्ट हो। अपने ही बेटे से ये कैसी जंग छेड़ रखी है तुमने? आर्या तो छोड़ो, तुमने तो कभी शौर्य और मायरा पर भी ठीक से ध्यान नहीं दिया। क्या तुम कभी एक अच्छे बाप बन पाए आशु?
आशुतोष ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। विक्रम जी को लगा था कि इतने सालों में पहली बार उन्होंने आशुतोष को इन सब का एहसास कराने की कोशिश की थी, उसका कुछ तो फायदा होगा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा। आपको क्या आशुतोष का दिल इन सब से पिघलेगा या नहीं? जिस हिसाब से वो गया है, मैं को तो नहीं लगता है।